बीबीसी इंडिया बोल 16 नवंबर दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या राष्ट्रपति शासन ही आखिरी विकल्प था? लोकतंत्र की सेहत के लिए क्या है इस घटनाक्रम के मायने? यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामशेषन, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज खत्म हो गया और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि उस चुनाव में लगभग 80% मतदान हुआ है। कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा अधिकतर जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। रविवार तक नतीजे आ सकते हैं। इन चुनावों में 35 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला गोटाबाया राजपक्षे और सजित प्रेमदासा के बीच है। ईरान में ईंधन की बढ़ती कीमतों और राशनिंग के खिलाफ दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पश्चिमी शहर कैरमानशाह में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रात में प्रदर्शनकारियों ने सिरजन शहर में एक ईंधन के डिपो पर हमला बोल दिया और आग लगाने की कोशिश की। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट की पहली सालगिरह पर राजधानी पेरिस में फिर से विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की संख्या इस बार काफी कम थी, लेकिन एक समूह ने शहर के रिंग रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। साल 2018 में येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस में ईंधन की बढ़ती कीमतों, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। पिछले प्रदर्शनों की हिंसा को देखते हुए इस बार पहले ही पेरिस में अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। प्रदर्शनों में शामिल एक शख्स ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि हम लोग यहां हैं। हम राष्ट्रपति मैक्रों को बता रहे हैं कि हम अब भी यहां पर हैं और येलो वेस्ट मूवमेंट मरा नहीं है। उन्होंने इसे खत्म करने की पूरी कोशिश की है। हम फ्रांस के लिए यहां पर हैं। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने बीबीसी को बताया कि वो हांगकांग में बढ़ती हिंसा के प्रभाव को देखते हुए अपनी निवेश योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। हांगकांग में मंदी की स्थिति है और एक बैंक ने कहा है कि 2019 की अंतिम तिहाई में हांगकांग के राजस्व में लगभग 25% की कमी आ सकती है। सिटी ग्रुप के कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद फर्म अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। इस हफ्ते के अंत में भी हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। वहीं पुलिस ने हर साल होने वाली गे परेड पर मार्च निकालने की बजाय एक ही जगह पर रैली करने की अनुमति दी है। इस प्रतिबंध को लेकर परेड में शामिल होने जा रहे चिंग सांग ने कहा, मुझे लगता है कि पुलिस को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि माहौल बहुत शांतिपूर्ण होता है। हम लोग लैंगिक रूप से अल्पसंख्यक जरूर हैं, लेकिन हम भी देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें रैली और विरोध करने की आज़ादी है। ये थे गे परेड में शामिल होने जा रहे एक शख्स के शब्द। इथियोपिया में प्रभावशाली मीडिया व्यक्तित्व और एक्टिविस्ट जवार मोहम्मद ने कहा है कि वो अगले साल चुनाव में खड़े होंगे ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सकें। लेकिन अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया है कि वो किस पद के लिए और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जवार मोहम्मद इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी मोहम्मद के पूर्व सहयोगी रहे हैं और उन्हें पिछले साल जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में दोनों मतभेदों के चलते अलग हो गए। सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों के कब्जे वाले शहर अलबाब में एक बम विस्फोट हुआ है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये विस्फोट एक बस स्टेशन पर एक कार में हुआ। इसमें 10 लोगों की जान चली गई। अभी ये पता नहीं चल सका है कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811 7000 और 1800-102-7001। श्रोताओं, आज चर्चा का विषय निकल कर आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, आज पूरे 23 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी दल किसी भी तरह अब तक सरकार नहीं बना पाया। 24 अक्टूबर को आए नतीजों के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज़्यादा 105 सीटें मिली, शिवसेना को 56 सीटें मिली। दोनों में गठबंधन था, दोनों को साथ मिलकर सरकार बनानी थी, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसे लेकर बात नहीं बनी और बात इतनी बिगड़ी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। दूसरा गठबंधन था कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच, कांग्रेस को 44 सीटें मिली जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस को 50 से ज़्यादा। राज्य में विधानसभा की कुल सीटें हैं 288 और सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की ज़रूरत है। यह तो हुई बेसिक जानकारी जो महाराष्ट्र की राजनीति के अंक गणित को समझने के लिए ज़रूरी थी। अब आपका परिचय कराते हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। भारतीय जनता पार्टी पर इनकी पैनी नज़र रहती है, बाकी दलों की राजनीति को भी राधिका जी बखूबी समझती हैं और समझाती भी हैं। स्वागत है आपका। राधिका जी, सबसे पहले यही बताएं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गतिरोध लगातार जारी है, उसके लिए किसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाए?
अब भाई, ये जो लड़ाई है ये सेना और भाजपा के बीच में ही है। मैंने दोनों को, अगर आपने तो गणित का विश्लेषण किया, और दोनों को, दोनों ने प्री पोल अलायंस के रूप में चुनाव लड़ा था, और आज अगर वो लोग अपना राजधर्म या कोएलिशन धर्म निभाते तो आराम से सरकार में बैठ जाते, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह पेंच अटक गई है। ये आप कुछ ईगो का भी सवाल है, और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी और अमित शाह जी के बीच में ऐसी कुछ बातें हुई थी चुनाव के पहले, जिसकी पूरी तरह जानकारी अभी बाहर नहीं आई, सार्वजनिक नहीं हुआ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। अब कोई डील या कोई अरेंजमेंट हुआ हो, और किसने कौन पीछे हटा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। कभी लग रहा है कि शिवसेना अड़ी हुई है बिना वजह की, क्यों ना मानती अगर उप मुख्यमंत्री का पद दे देते आदित्य ठाकरे, या उनके कोई भी नुमाइंदे उनको अगर दे देते तो उसमें बुरी बात क्या है, जैसे हरियाणा जैसे अरेंजमेंट हो और मुख्यमंत्री का पद फिर बीजेपी को छोड़ दे, क्योंकि बीजेपी की देखिए संख्या जो है 105 और सेना जो है उसमें काफ़ी अंतर है, तो अगर आप उस पे जाएं, संख्या के बल पे जाएं, तो बीजेपी का बनता है कि वो मुख्यमंत्री की का पद रखे।
लेकिन शिवसेना ये कहती है कि आपने, बीजेपी ने वादा खिलाफी की है, ढाई ढाई साल के लिए अरेंजमेंट हुआ था।
संदीप जी, किसको माने हम? ये उद्धव जी का शब्द है और अमित शाह जी कुछ और विपरीत कह रहे हैं, या भाजपा कुछ विपरीत कह रही है, तो हम किसे माने?
तो कुछ तो गड़बड़ हुई है,
कुछ बहुत बुरी तरह गड़बड़ हो गई है, जिसके वजह से राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र में पहली बार तो नहीं लगा,
तीसरी दफा लगा है,
लेकिन आप देखा जाए तो महाराष्ट्र बहुत प्रेस्टिजियस स्टेट है, सबसे देश की सबसे अमीर प्रदेश है,
और बीजेपी ने भी नाक का सवाल बना लिया है।
बिल्कुल नाक का सवाल बना दिया है। आप अगर गौर करें तो जब बाला साहेब ठाकरे थे शिवसेना के प्रमुख, और उस समय बीजेपी, हाँ ये शिवसेना बीजेपी की अलायंस में जल्दी बताती हूँ, ये बहुत संतोषजनक कभी नहीं रहा, इनके बीच में बहुत गहरे मतभेद, बहुत गहरे विवाद हुए हैं, लेकिन उस समय प्रमोद महाजन जी थे जो सारे बातों को सुलझा देते थे, और कहीं ना कहीं अटल जी और अडवाणी जी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, और
छोटा भाई बड़े भाई वाले संबंध रहे हैं,
छोटे भाई बड़े भाई वाला संबंध रहा है, और बड़ा भाई छोटा भाई को खुश करने के लिए कहीं।
लेकिन इस बार शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, ऐसा लग रहा है, उसने संकेत दिया है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले शीशे के उस पार बैठकर कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे मेरे साथी कपिल देव सिंह इशारा कर रहे हैं, पहले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए।
श्रीमान, मेरा नाम अनुराग पांडे है, शाहजहांपुर जनपद से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
बहुत स्वागत है पांडे जी आपका।
मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें पुत्र मोह बहुत बड़ी अड़चन बन गया है, और जो आपके यहाँ पैनलिस्ट बैठी है महोदया, उनका विश्लेषण 100% सही है ऐसा मुझे लगता है। और चाहते तो जैसे चुनाव लड़ा गया था, प्री पोल अलायंस था, तो उसमें मोदी जी की छवि भी बहुत प्रभावी थी अच्छे मतदान के लिए और इनके पक्ष में सीटें आने के लिए। 56 सीटें ये मान के चले कि केवल शिवसेना के बल पर आई हैं, ये ठीक नहीं है। और 105 सीटों में कोई विवाद नहीं है, वो मोदी और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के रूप में जनता ने उनको दिए हैं। तो देखा जाए प्री पोल अलायंस के रूप में 105 बड़ी सीटें होती हैं, और 5 वर्ष मुख्यमंत्री का काम फडणवीस जी ने किया था, उनके विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, साफ सुथरी छवि है। तो और आदित्य अभी बहुत छोटे और इमेच्योर है पॉलिटिकली, जो मैं समझ पाता हूँ। तो बेहतर होता वो मुख्यमंत्री पद या कोई अच्छा विभाग लेते, मांग करते, कैबिनेट में अपने अच्छे सीटें लेते, लेकिन ये अड़ जाना कि, और अगर आदित्य की जगह कोई शिवसेना का सामान्य विधायक होता उसके लिए ये नहीं अड़े कभी कि उसको मिले। यहाँ पर सीधा सीधा पुत्र मोह है, और ये परिपाटी भारत के विभिन्न प्रदेशों में और क्षेत्रों में रही है, जिससे प्रदेश और देश की जनता को बहुत भुगतना पड़ा है।
उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से हमारे पहले श्रोता पांडे जी, अगले श्रोता के पास भी हम चलेंगे, उससे पहले राधिका जी, क्या राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था महाराष्ट्र में, या कोई और भी विकल्प हो सकता था?
देखिए, राष्ट्रपति शासन भी जिस हालात जिस परिस्थिति में लगा है उसमें सवाल तो जरूर उठते हैं, क्योंकि शरद पवार जी को उसी दिन रात को बुलाया था 8:30 बजे। तो मुझे लगता है कि जो प्रोसीजर है वो हर एक पार्टी को एक मौका दिया जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पवार साहब सफल होते या कांग्रेस, तो सबसे छोटी पार्टी है, या कांग्रेस सफल होते, लेकिन जो प्रोसीजर एक है उसे फॉलो करते तो शायद बेहतर होता। थोड़ी जल्दबाजी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी बात जारी है, डायलॉग जारी है इन तीनों पार्टीज़ में, अभी कोई हल नहीं निकला ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। आज बल्कि राज्यपाल जी से मिलने वाले थे 8:30 बजे, लेकिन वो भी मीटिंग टल गया है। तो इन तीनों में भी, इन तीनों को भी साथ में आके एक सरकार चलाना, मुख्यमंत्री के नाम पे वो सहमति बनाना, ये सब बहुत मुश्किलें हैं। याद रखिएगा कि कांग्रेस हो या एनसीपी हो या जो भी हो, वो शिवसेना के साथ लगातार लड़ते रहा इतने साल, तो एक रात में समझौता होना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल की भूमिका पर भी हम आगे और चर्चा करेंगे। अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, इस समय कौन लाइन पर है हमारे साथ?
जी सर नमस्ते जनाब, मैं J&K से डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ। सर
शफी साहब बहुत स्वागत है आपका।
सर बात यह है कि शिवसेना और BJP की विचारधारा जो थी वो एक थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि BJP ने उसके साथ अन्याय किया है और उसके साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि अगर ये 30 साल या 40 साल इकट्ठे रहे और इनके पास जितने भी मिनिस्टर हों, वजीर आजम हों, सब कुछ इन्हीं का बना, अगर महाराष्ट्र एक स्टेट है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर उसका बना लेते तो क्या हर्ज था, क्या वजह थी? इसलिए ये सब BJP का कसूर है, शिवसेना का कोई कसूर नहीं, और शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाना इनके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि एक विचारधारा का आदमी था उसको भी लिफ्ट दे देते, लेकिन इनमें हुंकार है, ये कहते हैं कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती, इसलिए शिवसेना का वजीर चीफ मिनिस्टर बनाना जरूरी था। फिर जो राष्ट्रपति राज लगाया, हेलो
जी जी सुन रहे हैं आपको,
राष्ट्रपति जो मिसाल के तौर पर वो उन्होंने एक राष्ट्रपति राज लगाया, ये भी गलत किया, क्योंकि किसी को मौका तो दो भाई, जो 18 घंटे या थोड़ा मौका क्यों दिया, ये सरासर नाइंसाफी की है, शिवसेना से टोटल नाइंसाफी है, ऐसी नाइंसाफी शिवसेना जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, और उसका कोई कसूर नहीं है, सब BJP का कसूर है सर।
बहुत शुक्रिया शफी साहब अपनी बात रखने के लिए। राधिका जी, बीते 5 वर्षों में हमने देखा कि BJP को जिस राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला वहाँ BJP सरकार बनाने से कतई नहीं चूकी, किसी भी तरह उसने सरकार बना ली। महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि इस बार दहलीज पर जाके सरकार बनाने से BJP ने मना कर दिया?
ये तो बहुत अजीब बात है आपका, बिल्कुल महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, जबकि छोटे छोटे प्रदेशों में भी जो गोवा मणिपुर जहां उनको मैंडेट मिला नहीं, वाकई वहां किसी तरह तोड़ फोड़ के इन्होंने अपना सरकार स्थापित कर लिया। यहां मुझे लगता है कि जैसे आपके श्रोता ने कहा था, अहंकार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है भाजपा, क्योंकि अभी आज की जो भाजपा है, शिवसेना को समझना चाहिए वो पहले की भाजपा नहीं है। वो किसके साथ डील कर रहे हैं? वो अमित शाह जी के साथ डील कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ डील कर रहे हैं, तो जो बहुत जल्दी झुकने नहीं वाले हैं। क्योंकि वहाँ आप अगर गौर करें तो उस समय की बात जो है, प्रमोद महाजन कोई कसर नहीं छोड़ते थे बाला साहेब को मनाने को, और उद्धव ठाकरे बाला साहेब नहीं हैं, ये भी समझना चाहिए शिवसेना को। बाला साहेब की अपनी एक पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ही टॉल लीडर थे, जो भी हो उनकी एंगुलरिटीज़ एक्सेंट्रिसिटीज़ उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन आज की शिवसेना वो शिवसेना नहीं है, आज की भाजपा वो वाली भाजपा नहीं है, और ये दोनों साइड को समझना चाहिए।
ये आपने जिक्र किया, इसी से मैं थोड़ा सा तथ्य बताता चलूँ सुनने वालों को। 1984 में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी ने हाथ मिलाए थे पहली बार, 3 दशक से ज़्यादा पुरानी दोस्ती है दोनों के बीच में, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ये दोस्ती कुर्सी पर भारी पड़ गई, दोस्ती पर कुर्सी भारी पड़ गई और दोस्ती टूट गई?
पुत्र मुँह की तो बात किया है आपके एक श्रोता ने, तो हो सकता है कि उद्धव जी या उनके परिवार चाहते थे कि आदित्य ठाकरे जी को मुख्यमंत्री किसी तरह बनाएं, और मैं मानती हूँ एक्सपीरियंस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है पॉलिटिक्स में। देवेंद्र फडणवीस भी कोई बड़ा मंत्री पद तो नहीं होल्ड कर रहे थे जब वो मुख्यमंत्री बने, या दुष्यंत चौटाला, वो भी तो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो सीधा सीधा उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो ये यहाँ पर बीजेपी बहुत अड़ गई कि हमारा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर शिवसेना के हाथ में चला जाता शासन, तो एक तो सेना अपना बेस जो थोड़ा बहुत खो गई थी पिछले 5 साल में वो ज़रूर रिकवर करती, और दूसरी बहुत बड़ी फैक्टर है ये बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें शिवसेना पिछली बार पिट गई थी, कई सालों से शिवसेना का होल्ड रहा उसमें, बीजेपी के बहुत सीट्स नहीं आते थे, लेकिन पिछले बार जो है बीजेपी के ज़्यादा सीट आए और दोनों कोलिशन बना के अभी भी चला रहे हैं, वहाँ उनका रिश्ता टूटा नहीं है। मुंबई, थाने, कल्याण और कई सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का कॉम्पिटिशन का एंगल भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये जो BMC है वो विदेश का सबसे रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गिना जाता है। तो एक तो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है, पावर की बात है, पावर बेस की बात है। शिवसेना के पास मराठा का अच्छा खासा होल्ड था, उसमें सेंध लगाई बीजेपी ने इस बार NCP से तोड़ के, हालांकि बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया था। तो एक तो होल्ड, कौन सी पार्टी अपना होल्ड रखे, कंसोलिडेट करे, एक्सपैंड करे, ये सब फैक्टर्स हैं।
राधिका जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, चर्चा में बहुत सारे अभी आयाम आना बाकी हैं, इस बीच कुछ श्रोता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
हिमेश कुमार बोल रहे हैं, बिहार सीतामढ़ी के कमलदा गांव से।
जी हिमेश जी, स्वागत है, क्या कहेंगे आप?
सर कहना चाहते हैं, बीजेपी आप अथी लगाकर पूरे अपने को नुकसान पहुंचा रही है, शिवसेना के साथ गठबंधन करके भी सरकार नहीं बना पाई, इसे पता चलता है बीजेपी अपने पैर अपने कुल्हाड़ी मार रही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सरासर बीजेपी की गलती है, शिवसेना की कुछ गलती नहीं, शिवसेना के साथ अपना चीफ मिनिस्टर का सीट लेना चाहिए और सरकार बनाना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ।
बहुत शुक्रिया हिमेश जी संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए। अगले श्रोता के पास चलते हैं।
सर मेरा नाम शंभू शरण है।
जी शंभू जी, बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
धन्यवाद सर, हमारा सम्मिशन है कि ये बीजेपी और शिवसेना दोनों के अंदर एक जो ईगो फैक्टर, और जैसा पैनलिस्ट राधिका रामा शोषण बताई, वो सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और इस समय बीजेपी सारे वो नॉर्म्स जो पॉलिटिक्स के रह कर जो ये करना चाहिए, जिसके लिए वो मतलब बहुत जाने माने जाते हैं। यहाँ साहब मैं मतलब पावर पॉलिटिक्स उतना नहीं करता हूँ, लेकिन ये पावर के लिए बहुत ही किसी तरह से हुक और क्रूक इनको पावर चाहिए और ये उसके चक्कर में ये ओवर कॉन्फिडेंस होकर करके और ये कि अब और दूसरे बना नहीं पाएंगे, हमारा यूनियन गवर्नमेंट है और यदि कोई अटेम्प्ट हुआ तो एनी ऑफ द प्ली उसको मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि भाई साहब ये सब बहुत नालायक है, ये है वो है, केवल कुर्सी का गेम खेल रहे हैं। इसके वजह से ये पूरा मामला जो है वो अटक गया।
बहुत शुक्रिया शंभू जी। और भी श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं इस समय, अगले श्रोता को भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
हम जयशंकर सिंह बिहार मधुबनी जिला से बोल रहे हैं।
बहुत 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 स्वागत है जयशंकर जी।
जी जी सर, मेरा ये कहना है जो बाला साहब ठाकरे जी जो अपना एक संकल्प लिए हुए थे जिसके विरुद्ध में आज उसी के उनके जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं वो अपने पुत्र मोह में आकर के वो जो है उसी के विरुद्ध में आके बैठ गए हैं। और एक मुसलमान भाई साहब अभी बोल रहे थे जो बीजेपी का दोष है, बीजेपी वो काम किया है जो इनकी दांत टूट गई है, तो ये बीजेपी का विरोध तो करेंगे। मैं जानता हूँ ये हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी
नहीं आप बहस को चर्चा को गलत दिशा में मत ले जाइए। जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं उसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। अगले श्रोता के पास जाने से पहले राधिका जी थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा मैं आपको और चर्चा के आयाम को थोड़ा बदलते हैं। साल 2005 की बात है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, बिहार में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्या कोई फर्क है बिहार और महाराष्ट्र के मामले में, या मनमोहन से लेकर मोदी सरकार तक राष्ट्रपति शासन लगाने के जो तौर तरीके हैं वो ज्यों के त्यों हैं?
ज्यों के त्यों ही हैं संदीप जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई वो ऐसे थे और ये ऐसे थे, क्योंकि उन्होंने नीतीश को मौका नहीं दिया था उस समय। शायद मुझे जहाँ तक याद है नीतीश अपने दावा पेश किए और कांग्रेस सरकार ने उन्हें मौका नहीं दिया और सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन लगा दिया। झारखंड में भी कुछ ऐसे ही किया था कांग्रेस ने। तो आप ये ना भूलिए कि कांग्रेस कितने साल शासन में थी और ये जो पूरा ये जो ये राष्ट्रपति शासन लगाने का जो सिलसिला है और उसका मिसयूज़ करना वो कांग्रेस के समय ही शुरू हुआ और अन्य बीजेपी या जो भी दूसरी पार्टी हो जो सेंटर में आए हैं पावर में वो उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। आप ये यूपी में वो रमेश भंडारी जी का रोल जब वो राज्यपाल थे बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था, वहाँ भी भाजपा को मौका नहीं दिया उन्होंने और कोई किसी और सरकार को स्थापित कर दिया, तो भाजपा भी वो ही कर रही है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ गलती किया तो आप कर रहे हैं तो ये गलती माफ़ी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सारी पार्टीज़ को मिलके सोचना होगा कि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो प्रोसीजर है वो सही है या गलत है। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि कोश्यारी जी ने जब निमंत्रण दिया शरद पवार जी को, ये नहीं कह रही हूँ कि पवार जी सीधा सीधा बना लेते सरकार, लेकिन कम से कम उनका पक्ष जो है वो सुनना तो था और उसके पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया।
मैं आपकी बात में ही इसको कुछ बातें और जोड़ देता हूं कि सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने राज्यपाल से जो 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, राज्यपाल ने 24 घंटे का ही समय दिया। राज्यपाल ने एनसीपी को भी न्योता दिया सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। कांग्रेस ने इसीलिए कहा कि ये जो कर रहे हैं राज्यपाल वो असंवैधानिक है क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने मौका नहीं दिया। अगले श्रोता के पास जाने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से आग्रह करूंगा कि वो जो चर्चा हम जिस विषय पर कर रहे हैं उसी के संबंध में अपनी बात तार्किक तरीके से कहें और किसी व्यक्ति समुदाय के किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आप कोई टिप्पणी ना करें। अगले श्रोता के पास चलते हैं। जी
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
जी मैं हिमाचल प्रदेश से देवाचंद्र नेगी बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से।
बहुत स्वागत है नेगी जी।
जी मेरा तो ये था कि भाई वैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को दो ढाई ढाई साल का जो फार्मूला था उस पर काम करना चाहिए था और राज्यपाल मोदी जी को कांग्रेस को भी समय देना चाहिए था, 24 घंटे के लिए देते भी।
बहुत शुक्रिया निगी जी। राधिका जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया हाल ही में, उन्होंने कहा कि राजनीति जो है वो क्रिकेट की तरह है, नतीजा कभी भी बदल सकता है। क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या तस्वीर बन सकती है? क्या महाराष्ट्र में दोबारा विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं?
नहीं, विधानसभा चुनाव होना मुश्किल लगता है सोनी जी, कोई भी इतना जल्दी नहीं चाहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं केरला को छोड़ के, वहाँ लोग करोड़ों खर्चा करते हैं, महाराष्ट्र में बहुत खर्चा होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फिर इतनी जल्दी चुनाव में जाने का के मूड में होगा, भले ही ढाई साल के बाद, तीन साल के बाद जो भी हो। जो आज की जो सूरत हाल है उसमें लग रहा है कि कांग्रेस एनसीपी और सेना की ही सरकार स्थापित होगी, अब कितने दिन चलेगी वो हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चुना हुआ विधायक या अन्य कैंडिडेट जो हारे भी हैं वो फिर मैदान में जाने के, इतनी जल्दी जाने के मूड में नहीं होंगे। भाजपा भले ही जो भी कहे, उनसे प्राइवेटली बात करो तो वो कहते हैं कि इतना जल्दी चुनाव हम नहीं चाहते हैं।
बीजेपी के अध्यक्ष हैं गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से विपक्ष को नुकसान नहीं हुआ, जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी को ही हुआ है। क्या वाकई ऐसा हुआ है कि ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है?
फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन है वो भाजपा की ही सरकार है, जो देवेंद्र फडणवीस के प्राइवेट सेक्रेटरी थे वही सेक्रेटरी टू गवर्नर राज्यपाल के सेक्रेटरी बन गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक तरह से प्रॉक्सी सरकार ही होगी बीजेपी की।
शिवसेना ये आरोप भी लगा रही है।
शिवसेना लगाए, लेकिन मैं अपना इंडिपेंडेंटली कह रही हूँ, और बट नुकसान भी है, क्योंकि आप महाराष्ट्र जैसे एक प्रदेश जिस पे इतनी आप आशा लगाए बैठे थे वो आपके हाथ से निकल गया है।
जल्दी से एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। राधिका जी, फिर आएंगे आपके पास। अगले श्रोता कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अपना परिचय दीजिए। जी डोबरियाल जी, बहुत 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 स्वागत है आपका।
हाँ भाई साहब, पहले तो मैं एक सबसे पूछना चाहता हूँ बीच में कि मैंने बहुत पहले आपको रिक्वेस्ट की थी कि जो उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है उसके विषय में डिबेट कराया जाए, लेकिन आज मेरी मांग
कुछ करेंगे इस पे। पहले आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उस पे अपनी बात रखिए।
हाँ जी, मैं महाराष्ट्र के विषय में बोलना चाहता हूँ सोनी जी, कि महाराष्ट्र में जो राज्यपाल जी ने जो निर्णय लिया है वो असंवैधानिक है, गलत निर्णय था, क्योंकि सभी पार्टियों को बराबर मौका मिलना चाहिए था, उनको बोलने का पूरा हक था अपना पक्ष राज्यपाल जी के सामने रखते, लेकिन राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के इशारों के कारण ये काम नहीं किया। नंबर दो, दूसरी बात, जो शिवसेना जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को डेढ़ साल का उनको मौका मिलना चाहिए था, डेढ़ साल शिवसेना राज, डेढ़ साल भारतीय जनता पार्टी राज करती तो आज
महाराष्ट्र का ये पूरा घटनाक्रम जो अभी हम देख रहे हैं, झारखंड और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीति को किस हद तक प्रभावित कर सकता है?
बहुत संक्षेप में कह रही हूँ, ऑलरेडी प्रभावित कर दिया है। आप झारखंड की ओर एक नजर डालिए तो वहाँ पे बीजेपी की जो अलाय है आजसू, वो सीट ज़्यादा मांग रही है और जहाँ बीजेपी सीट नहीं मिला अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रही है, तो एनडीए नाम की कोई चीज़ है ही नहीं झारखंड में, क्योंकि रामविलास पासवान का पार्टी भी अलग लड़ रहा है, जेडीयू भी अलग लड़ रहा है, तो सीधा सीधा असर आपको झारखंड में दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली वैसे भी बीजेपी के लिए मुश्किल था, क्योंकि जो केजरीवाल है वो बहुत ही भारी बहुमत से जीते, भले ही उतने नंबर न लाएँ लेकिन एकदम उनको शून्य करना भी बहुत ही मुश्किल है, और बीजेपी में को यहाँ दिल्ली में ऐसे नेतृत्व भी नहीं खड़ा किया है जिससे जिसको आप इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल कह सकते हैं, तो इसका जो महाराष्ट्र का असर है हमें ऑलरेडी सीधा सीधा झारखंड में दिखाई दे रहा है, और अभी हमें देखना होगा कि बिहार पे क्या असर होता है इसका।
इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन और तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद की। जिन श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके उनसे हमेशा की तरह माफी मांगूंगा और अगले हफ्ते कोशिश करेंगे उनसे हम दोबारा उन्हें कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम में शामिल कर सकें। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए इंडिया बोल लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।